نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنا, اس میں سے ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں کہ خواتین کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو نیکی کا حکم دینا, اس کے بارے میں واقعات. 32 نمبر واقعہ ہے, ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بچے کے سونے کی انگوٹھی پر احتساب. سعید بن حسین نامی بچہ حضرت ام سلمہ کے ہاں آیا, اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. انہوں نے اپنی خادمہ کو بچے کی انگوٹھی اتارنے کا حکم دیا. اس کی دلیل امام ابن ابی شیبہ نے سعید بن حسین سے روایت نقل کی, فرماتے ہیں میں ام سلمہ کے ہاں آیا اور تب میں بچہ تھا اور میں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. انہوں نے کہا اے خادمہ یہ انگوٹھی مجھے دو. اس نے میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر انہیں تھما دی. انہوں نے فرمایا یہ اس کے گھر والوں کو دے آؤ اور ایک چاندی کی انگوٹھی تیار کرو. میں نے عرض کی کہ میرے گھر والوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے خادمہ کو حکم دیا اس کو صدقہ کر دو اور اس کے لیے چاندی کی انگوٹھی تیار کرو. تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ کہ ام سلمہ نے غلط چیز کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی, کیونکہ انہوں نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ بچے کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار لی جائے. اور اللہ کے نبی کی حدیث, یہ آپ میرے ساتھ دہرائیں گے, مر را منکم منکرن فل یغیرہ بیدہ, جو تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے بدل دے, اس بات پر عمل کیا. پھر دوسری بات یہ کہ بچے کی کم سنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہ بنی. ان کے اس طرز عمل سے علماء حسبہ کی اس بات کی تائید ہوتی ہے, یعنی یہ جو علماء نے بات کی ہے, کیا بات کی ہے کہ شرائط احتساب میں سے ایک یہ ہے کہ برائی موجود ہو اس کو کرنے والا ہوا مکلف ہو یا غیر مکلف, یعنی بچہ مکلف نہیں ہے. مکلف کیسے؟ جیسے 7 سال کے بعد نماز فرض ہوتی ہے نا, 8 سال 9 سال پہ فرض ہوتی ہے, 10 سال پہ ہوتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی حکم دیا جائے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک بالغ مرد کے لیے سونا حرام ہے, لیکن ایک چھوٹا بچہ جو ابھی بلوغت میں نہیں آیا اس کو بھی اس طرح کی چیزوں میں نہیں لینا چاہیے. میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ہمارے ہاں تو بچے کے پیدا ہونے پہ اتنی انگوٹھیاں آ جاتی ہیں, لڑکا یا لڑکی کیوں دیتے ہیں؟ اور لڑکا ہو تو پھر تو زیادہ خوشی سے آتی ہیں. کیا اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ جب ہم نے اپنے اسکول کی کمپین شروع کی تھی الحمدللہ ناروے میں, تو ایک ماں جو اتنا اس کی ڈبی تھی, جب اس نے پلٹی اس میں شاید 30-35 صرف بچوں کی انگوٹھیاں تھیں. بچوں کو اس کے ملی ہوئی ہوں گی اور ایک ایک بچے کو 6-6, 7-7 ملی ہوں گی, تو 4 بچوں کی وہ ہو گئی. وہ ساری اسکول کو دے گی کہ پہننی کس نے اور رکھنی کس نے. اور کتنا خطرہ آپ دیکھیں نا, بچے کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو میڈز ہیں ماسیاں ہیں جو بھی دیکھیں, کہیں اللہ نہ کرے ہاسپٹل میں بچہ جائے ڈاکٹرز کے پاس. یہ تو ایک آپ کا اپنا شوق ہے, اپنی پہنی ہو چیز تو الجھن آئے گی تو بچے کو کتنی آتی ہے. تو آج سے اس پہ عمل سوچیں کہ آپ کم از کم کسی کو سونے کی انگوٹھی نہ دیں. بیٹی ہو تو دے دیں, بیٹے کو نہ دیں, کیونکہ یہ بھی ایک رسم چلی پڑی ہے ہمارے کلچر میں. پھر انہوں نے خادمہ کو صرف سونے کی انگوٹھی اتارنے ہی کا حکم نہ دیا بلکہ بچے کے لیے چاندی کی انگوٹھی تیار کرنے کا حکم دیا. تو دوران احتساب ممنوع چیزوں اور ناجائز باتوں سے روکتے وقت جائز چیزوں کے مہیا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. آپ لوگ ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ سونے کی انگوٹھی دلہا کو جو دی جاتی ہے تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے. دیکھیے کہ کوئی دوسری دھات ہے, پلٹینم ہے یا چاندی ہے, کوئی اس میں دوسرا سٹون ہے, وہ پہن سکتا ہے مرد, جن کا دل کرتا ہے وہ پہنے, ہم اس کو منع نہیں کر سکتے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انگوٹھی پہنتے تھے جس کے اوپر مہر نبوت سب تھی. اور وہ آپ نے کب بنوائی تھی؟ جب آپ نے بادشاہوں کو دعوتی خط لکھے تھے تو اس دور میں بادشاہ مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے تھے. یہ ایسی جیسے گورنمنٹ کا پیپر آئے تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے, کوئی کاغذ پہ لکھا ہوا وہی نوٹس بھیجتے تو ہم قبول نہیں کریں گے. پھر اس وقت آپ نے وہ اپنی انگوٹھی بنوائی تھی جس کے اوپر مہر نبوت تھی, سب سے اوپر اللہ اور اس کے بیچ میں محمد اور نیچے رسول. رسول, اللہ اور محمد, یہ 3 لفظ تھے. تو ترتیب میں لفظ اللہ تعالیٰ کا نام اوپر تھا. تو کیا پتہ چلا کہ اگر ضرورت کے تحت یا اس شوق میں کوئی پہنتا تو اٹس اوکے, لیکن سونا تو کسی صورت میں نہیں, نہ پیدا ہونے پہ اور نہ دلہا بننے پہ. یہ ارمان ہے. اور ہمارے پاس یہ جو میں نے ابھی بتایا گولڈ میں, تو مردوں کی اتنی انگوٹھیاں آئیں, وہ ان کے میاؤں کو جن کے ملی ہوئی تھی चौदन शुक्र किया कोई ले ले, हमने इसको क्या करना है। अब मर्द कहाँ पहनते हैं बाद में, और अच्छा भी नहीं लगता। तो मनी का इसराफ भी है, ज़ाया भी होती है चीज़, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। फिर अगला वाक्य है हज़रत आयशा का, मर्दों से मुशाबहत करने वाली औरत पर एहतसाब। हज़रत आयशा के सामने एक ऐसी औरत का जिक्र किया गया जो मर्दों ऐसे जूते पहनती थी, ये सुनकर उन्होंने इस पर नक फरमाया। इमाम अबू दाऊद ने इब्ने अबी मुलैका, ये मलिका नहीं है मुलैका है, इस पर आराब लगाइए, इब्ने अबी मुलैका से रिवायत नकल की। उन्होंने बयान किया आयशा से कहा गया एक औरत मर्दों वाली जूती पहनती है। उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत पर लानत फरमाई है जो लिबास और वज़ा क़ता में मर्दों से मुशाबहत करती है। इस किस्से से फ़ायदा क्या मिला हमें? पहली बात है कि अहले इल्म के सामने मसलहत की गरज से किसी की खामी का जिक्र करना गीबत के दायरे में दाखिल नहीं। ज़रा उन्होंने बताया ना किसी का, तो अल्लाह के नबी ने ये तो नहीं कहा कि चुगली नहीं करो या गीबत नहीं करो। वो एक इसलाह की खातिर जो बात कर रही थी मसलियत के साथ, तो उसका जिक्र है। फिर हज़रत आयशा ने अपने इख्तसाब में नबी सल्लम के इरशाद ग्रामी से इस्तदलाल लिया, यानी आपने हदीस कोट की, अपनी तरफ से नहीं कहा कि औरतें ये ना करें। फिर अगली बात यह कि मर्दों से लिबास और वज़ा कता में औरत का मुशाबहत इख्तियार करना किस कदर संगीन जुर्म है कि अल्लाह के नबी ने ऐसी औरत पर लानत की है। अब ये लिखते हैं कि बास मुसलमान औरतें मर्दों वाली पतलूने, जैकेट्स, शर्ट्स और जूतियाँ पहनने और मर्दों जैसी अपने बालों की खराश तराश बनाने में फ़ख्र महसूस करती हैं। रहमतुल्लिल आलमीन की लानत का मुस्तहिक बनना बायस फ़ख्र नहीं बल्कि बायस शर्म और अफसोस है। कुरान की आयत है फ़मा लिहा उलाइल कौमी ला यकादून यफ़क़हून हदीसा, इस कौम को क्या हो गया है कि ये बात को समझने के करीब ही नहीं आते। ये सूरह निसा की आयत है। तो क्या पता चला कि ऐसी बातें जो हैं वो औरतों को जेब नहीं देती। इसके अलावा बहुत से दीन से ताल्लुक़ रखने वाले घरानों में बच्चियों के लिबास और बालों की खराश तराश में लड़कों से मुशाबहत आम है। क्या बेटियों से मोहब्बत के लिए यही मेयार बाकी रह गया है कि इन्हें ऐसे तर्ज ज़िंदगी का आदी बना दिया जाए कि वो बड़ी होकर रसूलुल्लाह की लानत की मुस्तक ठहरें? इनकी कम सिनी का उज़र दुरुस्त नहीं। हम बहसियत वालदैन इस बात के पाबंद हैं कि अपनी गोशा है जिगर की तरबियत शुरू से ही इस्लामी शरीयत के मुताबिक करें, वरना बाद में ना तो आम तौर पर इन पर कोई नसीहत कारगर होती है और ना अफसोस व नदामत हमारे किसी काम आ सकेंगे। मुझे नहीं लगता मुझे एक भी जुमला देना चाहिए। आज तो फ़र्क ही मिटा दिए। पहले जब लड़की को लड़कों वाली चीज़ें पहनाते थे तो बुरा लगता था, मायूब लगता था, साथ ही एक लफ्ज़ आ जाता था फलां बड़ा मॉडर्न है। मॉडर्निज्म था लड़कियों का पैंट्स पहनना और बाल खोलना और बॉय कट और हेयर कट और डायाना कट वगैरह, ये पहले करते थे लेकिन एक ख़ास क्लास के लोग करते थे और लोग समझते थे कि ये ऐसा बनने के लिए ये करना ही पड़ता है। अब ये फ़र्क मिट गया। एयरपोर्ट्स पे, बाज़ारों में, रस्तों में चलती फिरती लड़कियों को आप पैंट्स में, टाइट्स में देखते हैं और बाकी जो कुछ देखते हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब ये एक किस्म का मारूफ हो रहा है। देखिए मारूफ होता है जिसका तारुफ हो, उर्फ से, उर्फ कहते हैं पहचानने को, जानी पहचानी चीज़। जैसे हमारे कल्चर में शलवार कमीज जानी पहचानी चीज़ है, यहाँ कोई साड़ी पहन के आएगा तो एकदम गैर मारूफ लगेगा। कोई लंबा स्कर्ट पहन लेता है या कोई अबाया पहन लेता है, कोई लॉन्ग ड्रेस पहनता है तो थोड़ा सा नज़रों में घूमता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में सऊदी अरब और उधर शलवार कमीज मारूफ नहीं है। ठीक है, तो मारूफ क्या हुआ कि जो चीज़ तस्लीम कर ली गई, एक्सेप्टेड थिंग, राइट, और मुनकर नकेरा से इनकार, जिस चीज़ का तबीयत भी इनकार करे, माशरा भी इनकार करे, गैर मारूफ चीज़ है। तो आज आप देखें कि लड़के तो कभी फ़्रॉक नहीं पहनते, लड़के तो कभी साड़ी नहीं पहनते, लड़कों को तो कभी आप मैक्सीज में और फ्रॉक्स में नहीं देखते। इवन कोई मॉडर्न से मॉडर्न लोग भी हों, लेकिन लड़कियों को एक बोतल नुमा कपड़े में बंद कर दिया जाए और सोच ये दे दी जाए ये बड़ी मॉडर्न है, तो ये जहन का परसेप्शन है। हकीकत ये कि औरत औरत लगती ही मशरकी कपड़ों में, वो तो मर्द के मुकाबले में एक मर्द है। बाज़ दफ़ा ऐसी खवातियाँ अचानक जब कमरे में आती हैं खवातीन के, तो पर्दा करने को दिल करता है कि पता नहीं होता ये मर्द, शक्ल देखो तो पता चलता है कि ये औरत है। तो ये चीज़ें भी हमें अपने घर से शुरू करनी है। अगर आप, मैं इस किताब को पढ़ने पढ़ाने के दौरान कम अज़ कम अपने घर की सलाह कर सकें, अपने घर में तो मेरा आपका काबू है कि नहीं, बाहर की दुनिया को आप नहीं बदल सकते, अपने आप को हमें देखते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह से आप और मुझे इस पे अमल करना है, अपनी ज़ात से शुरू करें अगर आप है। और बाज़ दफ़ा कोई ज़ाहिर ख़राबी या कोताही नहीं भी दिखती सिर्फ़ इस ग्रज में। मैं आपको इसकी मिसाल दे के आगे चलती हूँ, किसी से दिल टूटा हो या खट्टा हो, मंगनी टूट जाती है, कभी रिश्ता हो के छूटता है, लोग उनकी दी हुई चीज़ें वापस कर देते हैं, वो कहते हैं रख लें आप, वो कहते हैं हमारा दिल नहीं करता पहनने को। घर छूटा तो लड़कियाँ पिछले कपड़े ही नहीं पहनती, क्यों नहीं पहनती जी, दिल खट्टा हो गया। तो दिल में नफरत और बुग़ज़ होता है ना, तो दिल खट्टा होता है। ये सारा होगा कब? जैसे अभी आप में से कोई कह रहा था कि मैं अपने बच्चों के दोस्तों या साथियों पे जो भी तनकीद करती हूँ और वो अब मुझसे खींचने लग गए। खींचता बंदा कब है जब दिल नहीं एक्सेप्ट करता। माओ का कसूर ये है कि वो बच्चों के दिल नहीं माइल करती, उनका दिल चाहने लगे, तलब नहीं पैदा करती। ऊपर से कहती हैं सीधा हो, दुपट्टा लो, सर पे लो, ये करो, वो तो और ज़्यादा चिढ़ेंगी। ये एक लफ्ज़ मुँह से बोलने की ज़रूरत नहीं, आप उनके अंदर शऊर पैदा कर दें, उनको एहसास होने लगे कि हर मामले में नमाज छूट रही है तो क्यों छूट रही है, हमारा जिस्म दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, हम लग क्या रहे हैं। तो इसके लिए वही फिर शुरू वाली बात कि हिकमत चाहिए। ये तबलीग का ये टॉपिक, ये नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये हमने लिया ही इसलिए कहीं हम कुरान पढ़कर लोगों को दीन से ना दूर कर दें, कुंद छुरियाँ ना बन जाएँ। और बात लोग यकीन करें, मैं आपको पूरे यकीन से कहूँगी, इस तरह नेकी की बात का हुक्म या बुराई से रोकते हैं कि दिल ही नहीं करता उनके कहने पे करो। अब आप चुप करेंगे तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तान्ने, चिढ़, इल्ज़ामात, बुरी बात, ये और खामखा एक आदत बना लेनी, ये इंतहाई जहर है। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को कि सिर्फ इस चिढ़ में, एक बच्चा था तो उसको मैंने एक दफ़ा पूछा कि आपको इतनी जो आवाज़ें देते हैं घर वाले या जो भी कि घर का खास फर्द देता है, तो आप क्यों नहीं उठते? तो उन्होंने कहा कि चिढ़ हो जाती है, फिर हम इंतज़ार करते हैं कि जाके ये सोएं तो फिर हम उठेंगे। और हकीकत है, ह्यूमन नेचर जो है ना, उसके अंदर ईगो भी है। तो कभी भी किसी की ईगो या उसकी अन्ना को ना बेदार करें, उसके ज़मीर को बेदार करें। जिस दिन ज़मीर जाग जाता है, फिर कौन बिस्तर पे सोता है? फिर खुद ही बंदा उठ जाता है। और एक सोए और एक जागे बंदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बात वाज़े, तो हमेशा तबलीग में नरम बात, प्यार की बात। और देखें कि एक दिन ये काम किया था, फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरे दिन ये गोली दी, फ़ायदा नहीं हुआ, आप डॉक्टर भी तो बदल ही लेती हैं ना। 10 दिन, 8 दिन एक ख़ास डॉक्टर पे जाएं, लोग कहते नहीं इनको बीमारी नहीं समझ आ रही, डॉक्टर चेंज करें। तो हमें भी तो तबलीग का तरीका चेंज करना है। एक बाप है, तो उनसे बात हो रही थी हमारी, कहने लगे कि बेकार हैं बच्चे, कुछ नहीं सुनते। तो जिनसे बात हुई उन्होंने कहा देखें 24 साल से आप एक ही तरीका इख्तियार किए हुए ना, तो अब ज़रा सा चेंज करके देखें तो सही। सारे बच्चे तो नहीं ख़राब हो सकते। देखिए, अगर एक टीचर ख़राब है, सारे स्टूडेंट ख़राब हो जाएंगे। बस दफ़ा हमारा अपना कसूर होता है, 80-90% कसूर हमारा है। मैं मानती हूँ नफ्स की शरारतें, बस माँ बाप ने बहुत ही नाइस तरीके से कहा होता है, लेकिन बड़े होकर बच्चे माहौल के असर में एकदम गुम होने लगते हैं। कभी कॉलेज में गए तो चेंज आने लगी, कभी यूनिवर्सिटी में गए, कभी मर्द कमाने लगते हैं, लड़के बाहर दोस्तों में गए, ज़रा हल्का अहबाब, बड़ा चेंज आता है। लेकिन वो जो बुनियादों में पड़ी हुई चीज़ है ना, वो नहीं जाती। जहाँ बुनियादें बिगड़ती हैं, उसके अंदर घर वालों का कसूर होता है। नफ्स तो हमेशा ही नरमी चाहता है, नफ्स तो हमेशा ही आज़ादी चाहता है। तो कभी भी किसी को तबलीग के नाम पे दीन से दूर ना करें। अल्लाह ताला हमसे दीन की इज्जत करवाए और हम दीन की मोहब्बत और रग़बत का ज़रिया बने। मैं सोचती हूँ कि बोल के बताना कोई बहुत अक्लमंदी है। आप सबसे बोल रहे हैं, आप अपने बच्चे से नहीं बोल रहे, क्या ये उसकी अक्ल के अंदर हथौड़े बरसाने वाली चीज़ नहीं हो सकती? एक दिन सोचेगा, दूसरे दिन सोचेगा, इंसान का बच्चा है तो ज़रूर सोचेगा कि आखिर वजह क्या है कि ये मेरे से क्यों नहीं बोलते। अब बोल बोल के भी यही नतीजा लेना था, तो खामोश रह कर वो नतीजा ले लें। तो अल्लाह से दुआ करें हम सब के इस बारे में हमें हिकमत है, और हम दिल से बात निकाल देते हैं। ये भी एक, यहाँ बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन चूंकि बात चल रही है ना बच्चों की या बड़ों की, हम पेरेंट्स का या बड़ों का एक और बड़ा कसूर है, बहुत ही बड़ा कसूर है। आप इस मेरी बात को ज़रा सब फील करिएगा। हमें किसी पे गुस्सा आया, कुछ भी बात, हमने बच्चे को कहा 10 बजे आ जाना, वो नहीं आया, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, नहीं, गुस्सा बहुत आया, पता चला केयरलेसनेस हुई, या कोई भी काम, ये जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, या कोई म्यूज़िक सुन रहा है, या कोई उसके अच्छे कपड़े नहीं है, या कोई गान, कुछ भी है। अब आपको जो गुस्सा आया ना, आप जो ही वो सामने आएगा, पट 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 बोलेंगे एक लंबी तकलीर। 5 मिनट में, 4 मिनट में हम तो अपना सारा जहर उगल के ठंडे, चलो खाना खा लो, चलो अब चलते हैं। ये जुमला याद रखिएगा कि जब आपको किसी की किसी बात पे गुस्सा आया हुआ है, उस वक्त चुप हो जाएं और उसको अपने अंदर रखें। वो गुस्सा, वो ग्रज, वो तकलीफ, वो दर्द बनेगी, आपके अंदर सोज पैदा होगा, गुदास पैदा होगा, और उसको बाद में खामोशी से एहसास कैसे दिलाएं? अब वो आ ही गया लेट, खामोश हो जाए। मिसाल है कि आपने फ़ोन उठाया, आपका बच्चा आपसे बदतमीज़ी से बोला, आप दूसरी तरफ है कि आप भी उससे डांटे, क्या बदतमीज़ी, माँ से ऐसे बात करते हैं, ये करते हैं, अकल नहीं तुम्हें, तमीज़ नहीं। उस वक्त तो यस नो करके जो पूछ रहा है बता दें, उसके बाद आए तो बात ही ना करें। ये क्या बात है, नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आगे से आप मेरे से बदतमीज़ी से बोलेंगे सीधे से, तो मैं नहीं आपके साथ फ़ोन पे करने में कंफर्टेबल। कभी भी अगली दफ़ा वो बंदा आपसे फ़ोन पे बदतमीज़ी नहीं करेगा, समझ आ रही है? हम बाद में याद नहीं रखते, अभी इसमें कोड वर्ड क्या निकाला है मैंने, उस वक्त पी जाएं बाद में याद रखें। हम माएँ बाद में याद नहीं रखती, इसलिए हमारे बच्चे बिगड़ते हैं। वो कहते हैं अम्मी ने बोलना था, दो लफ्ज़ बोल दिया, अब इन्होंने हमारे आगे पीछे फिरना है। नहीं, बाद में याद कराएं, उस वक्त चुप रहें। उस वक्त चुप रहने से उसका ज़मीर जागेगा कि मैं तो इतनी ज्यादती करके आया हूँ, या मैंने इतना गलत काम किया, ये बोली नहीं है, गुस्सा नहीं किया। वो आपको मनाने की कोशिश करेगा, लाड करेगा, उसकी बात पे कुछ ना बोले, ना उसको अच्छा के ना बुरा, लेकिन अगले ही लम्हे उसको फिर एहसास दिलाएं कि मेरा दिल टूटा। और एक और चीज़ भी है, सच बताऊं, हम दूसरों को ये फीलिंग दे रहे होते हैं मेरा ये काम है, यानी उठो नमाज़ पढ़ो, मेरे लिए नमाज़ पढ़ो। मतलब बच्चों को बज दफ़ा फील ये होने लगता है कि जो ये नेकी का काम हमें कह रहे हैं या बुराई से रोक रहे हैं, इसमें इनका फ़ायदा है। हालांकि आप उनको फील कराएं कि ये उनका फ़ायदा है, ये उनकी सहूलत है। बात समझ गए? लोगों को जब हम सर पे सवार होके कह देते हैं ना कि बस हम हैं तो आपके सर पे ये काम हो रहा है, वरना ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो वो ढीठ हो जाएंगे। फिर मुझे लगता है कि हमारे बाद ही कभी उनका दिल अल्लाह बदलेगा तो बदलेगा। और उनको फिर समझाएं, अगर वो आपकी नहीं मानते ना तो आप उनकी नहीं मानेंगे। जाओ किसी और माँ को ढूंढ लो, वो कर देगी, मैं नहीं करूँगी तुम्हारा ये काम, किसी से करा लो। जाओ, माँ का सब्र जो होता है ना, ये बच्चों को सब्र सिखाता है, और माँ का प्यार बच्चों को प्यार सिखाता है। आप यकीन करें कि जो माएँ बच्चों के साथ मोहब्बत के साथ बचपन में रहती हैं, उनके बच्चे सारी दुनिया से नाराज़ हो जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अपने माओं से नाराज़ नहीं होते। ये हिकमत अल्लाह ताला हम सबको अता करे। अगला वाक्या है आयत 34 नंबर, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का बिर्रा नाम रखने से रोकना। बिर्रा किसको कहते हैं? नेकियाँ करने वाली, यानी ये खुद पसंदी वाला नाम है। अबू अब्दुल्ला करशी ने अपनी बेटी का नाम बिर्रा रखा, तो हज़रत ज़ैनब बिनते अबी सलमा रदी अल्लाह अन्हा ने इसे मना किया। इमाम मुस्लिम ने मोहम्मद बिन अमर बिन अता से रिवायत नकल की, उन्होंने बयान किया, मैंने अपनी बेटी का नाम बर्रा रखा, तो ज़ैनब बिनते अबी सलमा ने फरमाया, यकीनन रसूलुल्लाह ने इस नाम से मना फरमाया, मेरा नाम बर्रा रखा गया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम अपने आप को पाक करार ना दो, अल्लाह ताला तुम में से नेकी करने वालों को ज़्यादा जानता है। यानी बर्रा से मुराद नेकियों से भरी हुई। तो मतलब ये कि ये खुद पसंदी का नाम है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जो नेकियां करता है अल्लाह को उसका पता है। ये ऐसे जैसे अब हमारे यहाँ नाम मारूफ है ना, साइमा, अब ये आम नाम है, लेकिन बर्रा में मुबालगा है, जैसे बरीरा जायज़ है, बर्रा जायज़ नहीं है। बात समझ गए? खुद पसंदी या उसमें एक सेल्फ प्रोजेक्शन का तसव्वुर है। ज़ैनब के घर वालों ने अर्ज़ की कि हम इसका नाम क्या रखें? आपने फरमाया इसका नाम ज़ैनब रखो। क्या पता चला? कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के नबी की हदीस बयान की दलील के तौर पे। दूसरी बात है कि हज़रत ज़ैनब के घर वालों ने अल्लाह के नबी के इस हुक्म पर अमल करने के लिए फ़ौरन पूछा कि फिर हम बच्ची का क्या नाम रखें। जब आप किसी एक पे तनकीद करते हैं किसी एक मामले में, तो फिर उसको उसका कोई अल्टरनेट भी दीजिए। अहले ईमान का एक इम्तियाजी वसफ़ यही है कि वो अल्लाह के नबी के हुक्म पर अमल करने में तरद्दुद और तजब्ज़ुब का शिकार नहीं होते। अल्लाह ताला ने इन्हीं के बारे में फरमाया, इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुमा बैनहुम अन यकूलू समिअना व अतअना वलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मोमिनों को जब अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, तो इनकी बात सिर्फ ये होती है कि हमने सुन लिया और मान लिया, और यही लोग तो फलाह पाने वाले हैं। ये सूरत नूर की आखिर की आयतें 51 आयतें गालिबन। तो क्या पता चला? कि सुन के मानना है। अब आप देखिए कि इस वाक़े में हमारे लिए ये सारी बातें अमल की आ गई ना। नामों पे थोड़ी सी बात है, तो इसको देखिए, बस नाम होते ठीक हैं लेकिन हम उसको प्रोनाउंस ठीक नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लम ऐसे नामों को बदल देते थे बाज़ औक़ात, जिनके बारे में लोग गलत तरीके से उसको प्रोनाउंस करते थे। तो नाम बहुत ज़रूरी होता है, ठीक नाम और अच्छा नाम पुकारना चाहिए, ठीक है? फिर इसी तरह शहनशाह नाम पसंदीदा नहीं है। आपने फरमाया कि बदतरीन नाम है एक उस शख्स का जो अपने आप को शहनशाह कहलवाए, यानी शाह के साथ जो नाम आते हैं, शाहान, और इसी तरह जिसके अंदर वाकई फीलिंग्स आने लगें बड़ेपन की, तो ऐसे नामों से भी अवॉइड करना चाहिए। फिर इसके बाद अगला वाक्या क्या है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का गिरने वाले पर हंसने से रोकना। अब आप पढ़िएगा इसको, इसमें भी बहुत सारी अखलाकी तरबियत है, और ख़ास तौर पर हमारे कल्चर में तो दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत ही आम है। किसी की इज्जत को रुसवा करना लोगों का पसंदीदा काम होता है। पढ़ते हैं इसको। कुरैशी नौजवानों ने खैमे की रस्सी से ठोकर खाकर गिरने वाले को देखकर हंसना शुरू कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनको ऐसा करने से मना किया। इमाम मुस्लिम ने अस्वद से रिवायत नकल की है, उन्होंने बयान किया, कुरैश के चंद नौजवान मुकामे मीना में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ आए और वो हंस रहे थे। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्यों हंस रहे हो। उन्होंने जवाब दिया, फलां शख्स खैमे की रस्सी के साथ ठोकर खाकर गिर गया और करीब था कि इसकी गर्दन टूट जाती या उसकी आंख साया हो जाती। उन्होंने फरमाया, मत हंसो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, किसी भी मुसलमान को कांटा या इससे बड़ी चीज़ नहीं चुभती, मगर इसके सबब इसके लिए एक दर्जा तहरीर किया जाता है और एक गुनाह मिटाया जाता है। तो क्या पता चला कि किसी मुसलमान भाई की मुसीबत पे हंसना नहीं चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। इमाम नवी ने इस हदीस की शरह में ये बात लिखी है। इस हदीस से इस किस्म की हंसी की ममानियत साबित होती है। हाँ, अगर कोई शख्स इससे मगलूब हो जाए कि हंसी का रोकना इसके काबू में न रहे तो फिर मामला मुख्तलिफ है, लेकिन इरादे से यानी कसदन ऐसा करना काबिले मजम्मत है, क्योंकि इस तर्ज़ अमल में मुसलमानों की मुसीबत पर इजहार खुशी और इनकी दिल शिकनी है। दूसरी बात, हज़रत आयशा ने अपने एहतसाब की तायीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील पेश की, यानी वही बात कि जब भी हम बात करें तो हमें भी दलील से करनी चाहिए। और तीसरी बात यह कि मुसलमान की मुसीबत उसके लिए अल्लाह ताला के फजलो करम से अजर व सवाब का सबब बन जाती है। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि किसी के ऊपर नहीं हंसना। अब आप बताइए, हमारे यहाँ कितना आम है लतीफ़े, मजाक, खेल। यकीन करें कि आज हमारा मेयार इतना गंदा हो गया मजाक का, सास के लतीफ़े, शौहर बीवी के झगड़े और सबसे बढ़ के वज़ीरों के और मशीरों के किस्से। क्या ये दुरुस्त बात है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। इसलिए इंसान को हमेशा ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरे का मजाक उड़ाने से तो कुरान में भी रोका गया है, ला तस्खर। हो सकता है तुम जिसका मजाक उड़ाओ वो तुमसे बेहतर हो, तो इसलिए कभी भी बच्चों को इस पर इनक्रेज ना करें। हमारे यहाँ किसी का पाँव फिसला, कोई केले से गिरा, तो पहले दौर में लोग उसको जाके उठाते थे, अब उसकी तस्वीर खींचने लग जाते हैं। तो ये बड़ी ही गैर मुहज्जब चीज़ है। इंसान अपने आप को बचाए और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि कोई हमारे सामने ऐसा काम करें तो हमें भी उसको भी टोकना, और मजाक नहीं करना चाहिए किसी का। फिर अगला वाक़या है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भांजे को हसन रज़ी अल्लाह अन्हो को बुरा कहने से रोकना। यानी हज़रत आयशा के भांजे ने हसन रज़ी अल्लाह अन्हो को बुरा भला कहा तो उस पर हज़रत आयशा ने उनको रोका। हज़रत उरवा ने अपनी खाला मुख्तरमा हज़रत आयशा पर बुहतान के मौके पर हज़रत हसन की गुफ्तगू के पेश नज़र इन्हें बुरा भला कहा। हज़रत आयशा ने इन्हें इस बात से रोक दिया। इमाम मुस्लिम ने उरवा से बयान किया, यकीनन हसन बिन साबित ने आयशा के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें की थीं, इस पर मैंने इनको बुरा कहा तो हज़रत आयशा ने फरमाया, मेरे भांजे इन्हें कुछ ना कहो, क्योंकि वो यकीनन रसूलुल्लाह का दिफा किया करते थे। कब की होंगी बातें इन्होंने हज़रत आयशा के ख़िलाफ़? जब वाक़ इफ़्क़ हुआ था, हज़रत आयशा पर तोहमत लगी थी, और हज़रत हसन जो थे ये शायर भी थे। क्या पता चला इस वाक़े से कि मुखलिस और सच्चा मुसलमान भी बाज़ औक़ात दूसरे मुसलमान के बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाता है, फिर गैर मुनासिब बात कह देता है। तो हज़रत आयशा के बारे में हज़रत हसन को गलत फहमी हुई थी, लेकिन फिर अल्लाह ने उसको दूर कर दिया। दूसरी बात है, हज़रत आयशा की निगाह में रसूलुल्लाह की शान और अज़मत इतनी बुलंद है कि उन्होंने हज़रत हसन को अल्लाह के नबी का दिफा करने की बुनियाद पे पसंद किया, यानी उनकी इस खूबी का तذکرہ किया कि देखो वो अल्लाह के नबी का दिफा करते थे, मुराद है कि क्या हुआ अगर वो मेरी बुराई करते हैं। तो इसमें आपकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। ये ऐसी है जैसे अगर कोई आपके शौहर को बुरा कहे, आपको अच्छा कहे, तो जिससे मोहब्बत होती है उसको बुरा कहने वाला भी बुरा लगता है, और जो उसको अच्छा कहता है आपको भी वो अच्छा लगता है। फिर इसी तरह से हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा का अब्दुल मलक को खून रेजी से बचने की तलकीन करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आज़ाद करदा लौंडी हज़रत बरीरा अब्दुल मलक बिन मरवान को इस बात की तलकीन किया करती थी कि वो मनसबे खिलाफत पर फायज़ होने के बाद खून रेजी से इज्तनाब करें, यानी हुक्मरानों को ये कहा जा सकता है कि आप ब्लडशेड ना करें। दलील है, हाफिज़ इब्न अब्दुल बर ने जैद बिन वाक़िद से रिवायत नकल की है, यकीनन अब्दुल मलक बिन मरवान ने इसको बताया कि वो इस मनसब को संभालने से पहले यानी खलीफा बनने से पहले मदीना में बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बैठा करता था और वो मुझे फरमाया करती थी, ए अब्दुल मलक, मैं तुम में कुछ खसलतें यानी आते देखती हूँ और बिला शक व शुबा तुम इस मनसब को पाने के अहल हो। अगर तुम्हें इस मनसब पर फ़ाइज़ किया गया तो खून रेजी से बचना, क्योंकि मैंने यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बिला शक व शुबा मुसलमान का सिंघी की भराई के बराबर नाहक खून बहाने वाले शख्स को जन्नत के दरवाज़ों को देखने के बाद वहाँ से धुतकार दिया जाएगा। सोचिए कितनी हसरत होगी उस वक़्त क्या पता चला हजरत बरीरा की फतानत और फरासत जनी अकलमंद खातून थी, और कौन थी? लौंडी थी। आज हम में से कोई सोच सकता है कि उसकी मासी या उसकी मेड उससे भी अकलमंद हो या समझदार हो? तो बहुत दफ़ा सीधे साधे कम पढ़े लिखे लोगों में भी अक्ल ज़्यादा होती है। फिर दूसरी बात है अक्लो दानिश का उमदा इस्तेमाल, कि हज़रत बरीरा ने नहीं अनिल मुनकर के लिए इसको इस्तेमाल किया। फिर बुराई का कला कमा करने के लिए हज़रत बरीरा की शदीद तड़प और सच्चा जज्बा, कि उन्होंने इसके वजूद में आने से पहले ही अब्दुल मलक बिन मिरवान को इससे बचने की तलकीन की। एक है कि वो जुल्म करने लग जाते, फिर कोई तनकीद करता तो उनको गुस्सा आता। ये हकीकी बात है, आपका बच्चा कोई गलत काम कर आए तो फिर आप टोकेंगे तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन अभी किया नहीं और पहले से अच्छे तरह समझा दो बेटा वहाँ जा रहे हो, तरीके से बैठना, बदतमीजी ना करना, तो उस वक्त पर्सनल कोई नहीं लेता क्योंकि वो कर नहीं चुके होते। तो इससे पता चलता है कि कोई गलत काम कर चुका हो तो उसको हार नहीं दिलानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उससे पहले ही उसको बयान कर दिया जाए। फिर चौथी बात है कि खून रेजी से डराने के लिए हज़रत बरीरा का ज़ोरे बयान, और उन्होंने अपनी नसीहत में ये क़ुव्वत रसूलुल्लाह के खून रेजी के बयान करदा खौफनाक अंजाम के जिक्र करने से बफजल रब्बुल इज़्ज़त हासिल की। यानी अगर हज़रत बरीरा जो हैं हज़रत आयशा के पास ना होती और उस नाते से अल्लाह के नबी सल्लम से ये बातें ना सुनी होती, हो सकता है कि वो इस काबिल ना होती कि किसी की बुराई देखकर उसको टोक सकें। तो हमें भी करने की कोशिश करनी चाहिए इंशाल्लाह। फिर इसके बाद अगला है अमरा अंसारिया का हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को कूफा जाने से रोकना। कई सहाबा और ताबईन ने हज़रत हुसैन को अहले कूफा की दावत पर वहाँ जाने से मना किया। इन्हीं में हज़रत अमरा बिनते अब्दुर्रहमान अंसारिया भी थी, और ये जो अमरा अंसारी हैं ये अब्दुर्रहमान बिन साद बिन ज़ुरारा बिन अदस अंसारिया, यानी इनका पूरा नसब लिखा हुआ है, और हज़रत आयशा की तरबियत याफ्ता थी, शागिर्द थी आपकी, और उलूमे दीनिया में सनद की हैसियत रखती थी, यानी जैसे आज के दौर में आप कहें कि ग्रेजुएटेड थी, पढ़ी हुई थी या आलिमा का कोर्स किया हुआ था आज की ज़ुबान में। हज़रत आयशा की अहादीस का इन्हें तमाम लोगों से ज़्यादा इल्म था। तो उनकी ये बात है, दलील क्या है कि उन्होंने इस बारे में हज़रत हुसैन की खिदमत में एक ख़त लिखा, यानी चिट्ठी अरसाल की। हाफिज़ ज़ाहबी ने इस सिलसिले में लिखा है, हसरत हुसैन के इस इकदाम यानी कूफा जाने की संगीनी से आगाही और जमात के साथ चिमटे रहने की ज़रूरत के मुतालिक उन्होंने अमरा ने लिखा, उन्होंने इस बात से भी इनको आगाह किया कि वो अपने मक्तल की तरफ खींचे जा रहे हैं, मक्तल के कत्ल होने की जगह, वो अपने मक्तल की तरफ खींचे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं गवाही देती हूँ कि आयशा ने मुझे बताया कि उन्होंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, सरजमीन बाबुल में हज़रत हुसैन को कत्ल किया जाएगा। हज़रत हुसैन का आली मुकाम अमरा अंसारिया के लिए अपनी दानिश के मुताबिक इनकी खिदमत आलिया में दुरुस्त बात वाज़े अंदाज में अर्ज़ करने से रुकावट ना बना। यानी उनका मुकाम क्या था और उनका क्या था, बस जब हम लोगों से डर जाते हैं, अब हम कैसे कहें, हम इतने छोटे वो इतने बड़े, तो नहीं, जो जिसमें सच बात है, बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा, और अमीर को गरीब, गरीब को अमीर, सब टोक सकते हैं क्योंकि दीन की बात में कोई किसी का फ़र्क नहीं होता। दूसरी बात है कि हज़रत अमरा ने अपनी बात की तायिद में रसूलुल्लाह का फरमान नकल किया। तो बहरहाल बात का खुलासा वही है जो पिछले वाक़यात में था।